नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित ढांचागत केंद्रों पर हुए हमलों की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। प्रधानमंत्री ने श्री मसूद को ईद तथा नवरोज की शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं ने इस त्यौहार के समय पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची से बातचीत की। उन्होंने श्री अराकची को नवरोज और ईद की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि ये बातचीत संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों और व्यापक क्षेत्र पर इसके प्रभावों के बारे में हुई। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने तथा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का आग्रह किया है। एक संयुक्त बयान में इन देशों ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और ऊर्जा केंद्रों पर ईरान के हमलों की निंदा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान खत्म करने पर विचार कर रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य पूरा करने के करीब है। उन्होंने संकेत दिया कि अन्य देशों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। श्री ट्रंप ने साथ ही चेतावनी दी कि किसी भी व्यवधान से वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए सतर्क नागरिकों के सहयोग से सशक्त सेना की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध अब सीमाओं से दूर चला गया है। इसमें आर्थिक, डिजिटल, ऊर्जा और खाद्य क्षेत्र सहित राष्ट्रीय सुरक्षा भी शामिल है। उत्तराखंड के सैनिक स्कूल घोरागाल की स्थापना दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए श्री सिंह ने ये बात कही।
आज के वारफेयर में इकोनॉमिक वारफेयर के माध्यम से देशों को कमजोर किया जाता है। साइबर वारफेयर के जरिए पूरे सिस्टम को प्रभावित किया जा सकता है। स्पेस डोमेन में भी प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा एक बड़ा विषय बन चुका है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इन्फॉर्मेशन वारफेयर का दौर है, जहां नैरेटिव को कंट्रोल करना भी वारफेयर का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका।
सरकार ने बजट 2025-26 के अनुरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विनिर्माताओं और निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए म्यूचुअल ऋण गारंटी योजना में बड़े बदलाव किए हैं। पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों मशीनरी उपकरण खरीदने हेतु 100 करोड़ तक के सावधि ऋण पर 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा समर्थित ये योजना गारंटी देकर बैंकों से आसान ऋण दिलाने में मदद करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के वरिष्ठ अधिकारियों से करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की। 2900 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के बाद ये मामला दर्ज हुआ था। जांच एजेंसी के अनुसार प्राथमिकी में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसके प्रमोटर अनिल धीरूभाई अंबानी और अन्य अज्ञात सरकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के तीसरे दिन कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी बैठक आयोजित की गई। विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मलावी के ऊर्जा और खनन मंत्री डॉ जीन मथांगा तथा कई अफ्रीकी देशों के मंत्री एवं औद्योगिक नेता उपस्थित रहे। चर्चा में ठोस, परिणामकारी तथा संरचित कार्योन्मुखी साझेदारी द्वारा भारत अफ्रीका सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। मेरा युवा भारत सोमवार को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी पदयात्रा आयोजित करेगा। ये पहल मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी विषय पर आधारित होगी। ये पदयात्रा भारत के युवा स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह, शहीद शिवराम राजगुरु और शहीद सुखदेव थापर के बलिदान को श्रद्धांजलि होगी। मुंबई में इंडियन ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता में अनाहत सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज अनाहत ने तन्वी खन्ना को 3-1 से हराया। वहीं पुरुष वर्ग में वीर चोटरानी ने मलेशिया के संजय जीवा को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आज फाइनल में वीर चोटरानी और अभय सिंह आमने सामने होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कल जून में आयरलैंड के साथ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए भारतीय पुरुष टीम के कार्यक्रम घोषित किए। पिछले 8 वर्षों में भारतीय टीम 3 बार आयरलैंड का दौरा कर चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।